आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोग उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर कर रहे हैं मतदान। अगले 2 साल में उत्तर प्रदेश को मिलेगी पहली नाइट सफारी की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कुकरेल नाइट सफारी पार्क और चिड़ियाघर की समीक्षा बैठक के दौरान दिए निर्देश। वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर और मेरठ में कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित। निर्माण कार्यों पर भी लगाई गई रोक। और केंद्रीय शहरी और आवास राज्य मंत्री तुखम साहू ने 2 दिवसीय कार्यशाला का लखनऊ में किया शुभारंभ। कहा, स्वच्छ भारत मुहिम की पूरी दुनिया में हो रही है चर्चा। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए शांतिपूर्ण माहौल में आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। सुबह से ही लोग अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। कानपुर नगर की सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में भी मतदान को लेकर युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के अंदर भी उत्साह है। कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच लोग मतदान कर रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट।
की सीसामऊ विधानसभा सीट उपचुनाव के लिए आज नियत समय पर सुबह ठीक 7 बजे मतदान शुरू हो गया। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए 48 मतदान केंद्र और 275 बूथ तय बनाए गए हैं, जिनमें 1200 मतदान कर्मी लगाए गए हैं। सीसामऊ विधानसभा सीट पर भाजपा ने सुरेश अवस्थी को टिकट दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी से पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को इंडिया गठबंधन ने सपा से प्रत्याशी बनाया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने वीरेंद्र कुमार शुक्ला को टिकट दिया है, जबकि सीसामऊ उपचुनाव के लिए सभी जन पार्टी और एक निर्दलीय प्रत्याशी सहित कुल 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। सीसामऊ विधानसभा सीट पर कुल 2,69,770 मतदाता हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कानपुर नगर से मैं राजेश श्रीवास्तव।
उपचुनाव में करीब 34 लाख से अधिक मतदाता 90 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, इनमें मुजफ्फरनगर जनपद की मीरापुर, मुरादाबाद की कुंदरकी, गाजियाबाद, अलीगढ़ की खैर, मैनपुरी की करहल, कानपुर नगर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, अम्बेडकर नगर की कटेरी और मिर्जापुर की मझवा सीट शामिल है। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य पहचान पत्रों को भी मान्य किया है।
निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटो युक्त पासबुक और स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड आदि मान्य होंगे। 9 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 3,718 मतदेय स्थल तथा 1,917 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनावी प्रक्रिया को सम्पन्न कराने के लिए 9 सामान्य प्रेक्षक, 5 पुलिस प्रेक्षक के अतिरिक्त 350 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 56 जोनल मजिस्ट्रेट, 60 स्ट्रेटेजिक मजिस्ट्रेट और 745 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। मतदेय स्थलों पर लाइव वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था की गई है। दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर एवं वॉलंटियर्स की व्यवस्था रहेगी। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही स्ट्रांग रूम की जिम्मेदारी अर्धसैनिक बलों को दी गई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रस्तावित कुकरेल नाइट सफारी पार्क और चिड़ियाघर की समीक्षा बैठक के दौरान श्री योगी ने कहा कि दिसंबर 2026 तक उत्तर प्रदेश और देश को पहली नाइट सफारी की सौगात देने की दिशा में तेजी से कार्य किया जाए। राजधानी लखनऊ में बनने जा रही ये नाइट सफारी देश और दुनिया के प्रकृति प्रेमियों के लिए एक नया गंतव्य होगा। ये दुनिया की 5वीं नाइट सफारी होगी। निर्माण कार्य हर हाल में जून 2026 तक पूरा कर लिया जाए। वहीं एक अन्य बैठक में 26 दिसंबर से शुरू हो रहे संविधान के अमृत महोत्सव वर्ष के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री योगी ने कहा कि सभी सरकारी संस्थानों, कार्यालयों और विद्यालयों में संविधान दिवस धूमधाम से मनाया जाए। राज्य में लॉजिस्टिक सेक्टर की समीक्षा करते हुए श्री योगी ने सुदृढ़ नीतिगत ढांचा तैयार करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि राज्य में अंतिम छोर तक सुगम डिलीवरी के लिए परिवहन अवस्थापना तथा यातायात योजना बनाई जाए। आगरा में कल पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ लिविंग पर आधारित द्वितीय पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी एवं पंचायती राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने किया। सम्मेलन में जमीनी स्तर पर सेवा वितरण को बढ़ावा देने के विषय पर मंथन किया गया। पंचायत सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, नागालैंड, उत्तराखंड सहित 8 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और शासन से अनुभव साझा किए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने वर्ष 2025 की हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेंगी। इसमें कुल 54,38,597 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सभी विद्यालयों को 23 नवंबर तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। वहीं मेरठ में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों में अनिश्चितकाल के लिए अवकाश घोषित कर दिया है। मेरठ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 375 तक पहुंच गया है। जिले में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रैप सिस्टम लागू कर दिया गया है। नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने बताया कि इस दौरान सभी निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है।
ग्रैप 4 लागू हो रहा है तो ग्रैप 4 में काफी रिग्रेस हमें एक्टिविटीज को रोकना पड़ता है रिग्रेसिवली, और उसमें जितने भी निर्माण कार्य हैं इंक्लूडिंग रोड्स एक्सेट्रा उन पे भी हमें प्रतिबंध करना है। ग्रैप 4 में वो सारी एक्टिविटीज भी शामिल है जो ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 में हमें प्रतिबंधित करनी है, और इसके तहत अभी डिटेल गाइडलाइंस तो जिला प्रशासन के द्वारा भी जारी की जाएंगी। हमारी तरफ से जो भी मेन एक्टिविटीज बैन में शामिल होती है प्रतिबंध में उसमें हमने लागू कर दिया है। पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है और एंटी स्मॉग भी रेगुलरली चला रहे हैं जिससे कि हम जनता को राहत।
विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर कल केंद्रीय शहरी एवं आवास राज्य मंत्री तोखम साहू ने शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था के सुरक्षित प्रबंधन को लेकर लखनऊ में 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू की गई स्वच्छ भारत मुहिम की आज देश और दुनिया में चर्चा हो रही है। लगभग 4,000 से ज्यादा शहर ODF प्लस श्रेणी में आ चुके हैं। इस अवसर पर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी तथा केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय के विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर क्लीन टॉयलेट अभियान 2024 का भी शुभारंभ किया। इसके अलावा निजी क्षेत्र के सहयोग से देश में सामुदायिक शौचालय बनाने और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सुलभ इंटरनेशनल की मदद से शौचालय स्थापित करने को लेकर समझौता पत्रों पर भी हस्ताक्षर किए गए। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के तत्वावधान में 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता का आयोजन 26 नवंबर से 30 नवंबर तक गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में होगा। प्रतियोगिता के शुभंकर और ट्रॉफी का कल प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार ने अनावरण किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोग उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर कर रहे हैं मतदान। अगले 2 साल में उत्तर प्रदेश को मिलेगी पहली नाइट सफारी की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कुकरेल नाइट सफारी पार्क और चिड़ियाघर की समीक्षा बैठक के दौरान दिए निर्देश। वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर और मेरठ में कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित। निर्माण कार्यों पर भी लगाई गई रोक। और केंद्रीय शहरी और आवास राज्य मंत्री तोखम साहू ने 2 दिवसीय कार्यशाला का लखनऊ में किया शुभारंभ। कहा, स्वच्छ भारत मुहिम की पूरी दुनिया में हो रही है चर्चा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।